روفهی روف نیا. सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी। सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी में अभी तक आपने सुना कि कैसे हस्ती खेलती सुप्रिया घर में डकैती के बाद तहम सी गई थी। उसका मन हल्का करने और वातावरण बदलने के लिए दादू दादी और सुप्रिया गांव के घर में आ गए। गांव के घर के बाहर एक नीम का पेड़ है जिस पर काबुलीवाला आकर बच्चों को कहानियां सुनाता है। काबुलीवाला की कहानियां सुनने से सुप्रिया को विश्वास हो रहा था कि लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं और लोग इतने खराब नहीं होते। दादी सुप्रिया में बहुत अच्छे बदलाव देख रही थी। आज मम्मी पापा वापस भोपाल चले गए। सुप्रिया सुबह से बहुत उदास थी। वह मम्मी पापा के साथ वापस अपने घर भोपाल जाना चाहती थी। मम्मी ने उसे नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली लेके जाऊंगी, तब तक तुम्हारे स्कूल भी खुल जाएंगे, प्रॉमिस बोलकर गांव में दादा दादी के साथ छोड़ दिया। मम्मी पापा के जाने से उदास बैठी सुप्रिया अब काबुलीवाला के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे काबुलीवाला के डमरू की आवाज आई। वह उठकर नीम के पेड़ की तरफ खिंची चली गई। उसे लगा कि आज काबुलीवाला की आवाज में सच्चाई है। एकदम साफ सीधी आकर्षित कोई बात कहने वाला है जो सबके दिल को छू जाएगी। सुप्रिया का दिलो दिमाग काबुलीवाला की आवाज से इतना प्रभावित था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कब बच्चे आए, बैठे, काबुलीवाला का डमरू बजा और कहानी शुरू हो गई। राजा भोज ने अपने कदम जैसे ही सिंहासन की ओर बढ़ाए, सिंहासन से जुड़ी एक पुतली पद्मावती निकलकर सामने आ खड़ी हुई। हे राजन, मैं महाराजा विक्रमादित्य की सबसे प्रिय पुतली हूँ। मैं यह कदापि नहीं चाहती राजा इंद्र द्वारा दिए गए इस सिंहासन पर आप विराजमान ना हो, लेकिन क्या आप अपने आप को राजा विक्रमादित्य के भांति परोपकारी एवं पराक्रमी समझते हैं? मेरी यह कथा सुनिए, कहकर पद्मावती ने राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। एक रात की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर बैठे थे। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी आभा बिखेर रहा था। सारा राज्य चांदनी में नहाता प्रतीत हो रहा था। मौसम बहुत सुहावना था। राजा प्रकृति की अद्भुत घटा को निहार रहे थे कि अचानक उनके कानों में किसी नारी की करुणा भरी चीख की आवाज सुनाई दी। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि वह चीख पश्चिम दिशा से आ रही है। उन्होंने तुरंत अपनी ढाल तलवार संभाली और घोड़े पर सवार होकर आवाज की दिशा में चल पड़े। उन्होंने दूर से देख लिया एक सुंदर नारी बचाओ बचाओ की आवाज लगाती हुई जान बचाती भाग रही है। एक भयंकर राक्षस युवती का पीछा करता हुआ उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है। राजा विक्रमादित्य को देखकर युवती उनके पैरों पर गिर गई और बोली, बचा लीजिए, मुझे इस राक्षस से बचा लीजिए। राजा ने युवती की बांह थामकर उसे उठाते हुए बोला, उठो, तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में हो, अब कोई अहित नहीं कर सकता तुम्हारा, निर्भय हो जाओ। हा हा राक्षस विक्रमादित्य पर हंसता हुआ बोला, तू बचाएगा मुझसे इस सुंदरी को? तू तो एक साधारण मानव है, मैं तुझे पल भर में चीर फाड़ कर रख दूंगा। विक्रमादित्य ने स्त्री को अपने पीछे किया और तलवार हाथ में उठाकर कहा, तू नहीं मानता तो अब मुझसे तुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। राक्षस कुटिलता से मुस्कुराता दहाड़ता राजा की ओर बढ़ने लगा। उसके निकट आने पर राजा ने पैतरा बदला और राक्षस पर तलवार से वार कर दिया। राक्षस ने बेहद फुर्ती से वार बचाया और राजा से भिड़ गया। देखते ही देखते दोनों में भीष्म युद्ध होने लगा। थोड़ी देर में स्थिति बदलने लगी। राक्षस थका, उसके चेहरे पर परास्त होने का भाव उजागर होने लगा। विक्रमादित्य ने उचित अवसर देखा और अपनी तलवार से भरपूर वार राक्षस की गर्दन पर कर डाला। पलक झपकते ही राक्षस की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। गर्दन धड़ से अलग होने पर फिर वापस आकर जुड़ गई। राक्षस जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। वह पहले से अधिक रौद्र मुद्रा में आ चुका था। उसके खड़े होते ही उस स्थान पर जहां राक्षस का रक्त गिरा था, उस रक्त से एक दूसरा राक्षस पैदा हो गया। दोनों राक्षस राजा को ललकारते हुए सामने आए और राजा पर प्रहार कर दिया। यह चमत्कार देखकर राजा भौचक्का रह गया। उसने तुरंत अपने आप को संभालते हुए सोचा कि पहले दूसरे राक्षस पर वार किया जाए। पहले प्रहार में राक्षस के दोनों बाजू काट गिराए, दूसरे प्रहार से उसकी टांगें काट दी। राक्षस रंजित हुआ, धरती पर पीड़ा से चीखने लगा। पहले राक्षस ने अपने साथी की दुर्दशा देखी तो एकदम से पलटकर भागा और मैदान छोड़ गया। कुछ दूर उसका पीछा करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि पीठ दिखाने वाले पर प्रहार नहीं करना चाहिए। राजा वापस लौट आया। राजा ने शरणागत स्त्री से बोला, अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, असली राक्षस मैदान छोड़कर भाग चुका है और दूसरा धरती पर पड़ा दम तोड़ रहा है। मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचवा दूंगा। स्त्री ने राजा से बोला, आपने मेरी रक्षा करी है, उसकी मैं बहुत आभारी हूँ, किंतु खतरा अभी टला नहीं है। वह जीवित मैदान छोड़कर भागा है, समय पाते ही राक्षस लौट के आएगा। मैं जहां भी रहूंगी मुझे वहां से उठाकर वापस उसी स्थिति में ले जाएगा और मुझे विवाह करने पर मजबूर करेगा। अधीर मत हो बहन, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन दे चुका हूँ। शरीर में अंतिम सांस रहने तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, पर मुझे अपना परिचय दो, यह बताओ कि राक्षस कौन है और वह एक से दो कैसे हो जाता है। अवश्य, सुंदरी बोली, मैं सिंहल द्वीप राज्य के एक ब्राह्मण की संतान हूँ। मैं एक दिन जंगल में अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी कि वही इस राक्षस ने मुझे देखा और कुछ ही दिनों में उठा लाया। इसने मुझे अपनी कुटिया में कैद करके रखा था और मुझे डरा धमका कर विवाह करने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन मौका पाते साथ ही मैं वहां से भाग निकली। इतना कहकर स्त्री बहुत जोरों से रोने लगी। निर्भय रहो बहन, उस राक्षस का अंत मेरे ही हाथों होगा। पर तुमने अभी भी दूसरा पैदा होने वाले राक्षस की कहानी नहीं बताई, स्त्री ने आंसू पोंछते हुए बोला, पहला राक्षस के पेट में एक मोहिनी है। राक्षस जितनी बार भी मारा जाएगा, वह मोहिनी उसके मुंह में अमृत डालकर उसे उतनी ही बार जीवित कर देगी। साथ ही वह जब जब मरेगा, उसके रक्त से एक नया राक्षस पैदा होता जाएगा। पैदा होने वाला राक्षस दूसरे राक्षस को मोहिनी जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि वह पहले राक्षस के रक्त से पैदा हुआ है। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस राक्षस को मारे बिना राजमहल वापस नहीं लौटूंगा। मैं उस राक्षस की यही प्रतीक्षा करूंगा। यह आसान नहीं होगा राजन, राक्षस जब जब मारा जाएगा, तब वह नई शक्तियां पाकर वापस जीवित होगा। अभी राजा को विश्राम करते कुछ समय ही हुआ था कि झाड़ियों के पीछे से एक सिंह तेजी से गरजता हुआ राजा की ओर झपटा। पहले प्रहार से राजा की बांह जख्मी कर दी। तभी सिंह ने दूसरा प्रहार किया। इस बार विक्रम ने उसे पैर से पकड़कर हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। गिरने से सिंह ने भयंकर गर्जना करी और उसने राक्षस का रूप धारण कर लिया। यह देखते ही विक्रम ने तुरंत अपना दूसरा वार किया। राजा के प्रहारों से राक्षस लड़खड़ाने लगा। तभी राजा ने उचित अवसर पाकर तलवार राक्षस के पेट में घुसा दी। राक्षस धरती पर गिरकर झटपटाने लगा और उसी समय राजा ने राक्षस का पूरा पेट फाड़ डाला। पेट फटते ही राक्षस के पेट से मोहिनी निकलकर आसमान में लुप्त हो गई। कुछ ही क्षणों में राक्षस ने भी अपने प्राण त्याग दिए। स्त्री ने राजा को प्रणाम किया और धन्यवाद देते हुए बोली, आपकी कृपा से अब मुझे कोई भय नहीं है राजन, मैं निडर होकर अपने गांव वापस जा सकती हूँ। इस कथा को सुनाकर पुतली राजा भोज से बोली, यदि आपने जीवन में किसी राक्षस से ब्राह्मण कन्या का उद्धार किया है, तो आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। कहानी सुनने के बाद राजा भोज के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह चुपचाप महल में लौट जाए। राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने की इच्छा अभी छोड़ी नहीं थी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज ने अपने कदम सिंहासन की ओर बढ़ाए, एक और पुत्री सिंहासन से निकली और कथा सुनाने लगी। कहानी सुनाकर काबुली वाले ने अपना डमरू बजाया। से चला गया। सभी बच्चे भी अपने अपने घर चले गए। शाम की चाय के समय जब दादी आंगन में पहुंची, तो देखा सुप्रिया आकर झूले पर बैठी थी और कुछ सोच रही थी। दादी ने उसकी सोचने की प्रोसेस में इंटरप्ट करते हुए पूछा, क्या कहता है तुम्हारा काबुली वाला, आज कौन सी कहानी सुनाई उसने? हाँ दादी, अजीब सी कहानी, उस पर विश्वास ही नहीं होता, सुप्रिया ने धीमी सी आवाज में बोला। अच्छा मुझे सुनाओ, मैं इच्छुक हूँ। दादी ये नहीं चाहती थी कि सुप्रिया काबुली वाले में अपना इंटरेस्ट लूज कर दे। हाँ दादी सुनाती हूँ, कहकर सुप्रिया ने दादी को कहानी सुनाई और बोली, ऐसा कहीं होता है क्या दादी, पहले के समय में क्या राक्षस हुआ करते थे, किसने देखे हैं? सुप्रिया, रीड इन बिटवीन द लाइंस, यह राक्षस कोई और नहीं, हमारे अंदर रहने वाली हमारी बुरी इच्छाएं हैं, जो हमें बुरे कार्य means bad or evil work करने पर मजबूर करती हैं। विक्रमादित्य हर किसी के अंदर है, जो बार बार इन evil thoughts को मारता है, पर evil thoughts फिर किसी ना किसी रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे काबुलीवाला की कहानी का राक्षस बार बार जिंदा होता था। दादी, क्या हम सबके अंदर यह राक्षस यानी ईविल थॉट्स हैं? हाँ सुप्रिया, तुम बिल्कुल सही समझी। बस कोई लोग इन ईविल थॉट्स पर विन कर लेते हैं और कोई इन पर विन नहीं कर पाते, तो उन ईविल थॉट्स के बहाने वे गंदे और गलत काम करते हैं। अच्छा दादी, मैं समझ गई। मैं हमेशा कोशिश करूंगी यह ईविल थॉट्स मुझसे गंदे काम ना करवाएं। यह हुई ना मेरी अच्छी सुप्रिया जैसी बात। चलो, लेट्स हैव डिनर।